हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। दिल्ली के एक 7-स्टार होटल में बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। वहां सिर्फ VIP लोग ही इकट्ठा थे, जो बिजनेस वर्ल्ड और पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। वहां कुछ माफिया से जुड़े हुए लोग भी थे, जिनका बिजनेस वर्ल्ड में अच्छा खासा नाम था। पार्टी काफी शानदार थी और वहां इन्विटेशन कार्ड के जरिए ही एंट्री मिल रही थी। ये पार्टी किसी और की नहीं बल्कि प्रतीक रायचंद, जो एशिया के टॉप 10 बिजनेस टाइकून्स में से आता था, उसके बेटी की बर्थडे पार्टी थी। इस पार्टी की भीड़ में एक तरफ युग और कृषा खड़े थे। युग ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था तो कृषा ने उसके साथ ट्विनिंग करते हुए ब्लैक कलर का बॉल गाउन पहना हुआ था, जो शोल्डरलेस था। कृषा ने बोरियत भरे लहजे में युग की तरफ देखकर कहा, एक तो पहले ही मेरा कहीं मन नहीं लग रहा, ऊपर से तुम मुझे इतनी बोरिंग पार्टी में लेकर आए हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी युग, प्लीज मुझे वापस लेकर चलो, मुझे रोना आ रहा है। युग ने कृषा के कमर पर हाथ रखा और उसके बिल्कुल करीब आकर धीरे से कहा, आई नो काफी बोरिंग पार्टी है, पर यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब मेरे लिए तुम इतना टॉलरेट तो कर ही सकते हो। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए पार्टी में रुक जाऊंगी, तो तुम मेरे लिए क्या करोगे? ऐसा करो, मुझे मेरे ध्रुव के पास भेज दो, कृषा ने झट से अपनी शर्त रखते हुए कहा, जिस पर युग ने आइज रोल करके ना में सिर हिला दिया। ध्रुव पूरे एक महीने के लिए बेंगलुरु में रुकने वाला था, जबकि अभी तो उसे गए हुए सिर्फ 5 दिन हुए थे। इतने दिनों में ही कृषा ध्रुव को बुरी तरह मिस कर रही थी। कृषा आगे कुछ कहती उससे पहले युग ने उसे चुप रहने का इशारा किया। वहां पार्टी की स्पॉटलाइट किसी पर पड़ रही थी। वो कोई और नहीं, प्रतीक रायचंद की बेटी मेहर रायचंद थी। वो प्रतीक रायचंद की इकलौती बेटी थी, जो आज अपना 27th बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही थी। सबकी नज़रें उस पर ठहर गई थी। उसका स्किन टोन बहुत ब्राइट था और इस वक्त उसने गोल्डन कलर का गाउन पहना हुआ था, जो 1 शोल्डर ऑफ था और जिसके राइट साइड में एक लंबा सा स्लिट था। मेहर ने महंगी डायमंड ज्वेलरी कैरी कर रखी थी। उसका एटीट्यूड इस वक्त देखते ही बन रहा था। मेहर ने जैसे ही पार्टी में कदम रखा, किसी एक और शख्स की नज़रें उस पर ठहर गईं। वो दक्ष मल्होत्रा था, जिसने मेहर से ट्विनिंग करते हुए गोल्डन कलर का ब्लेजर पहन रखा था। वो प्रतीक रायचंद के पास खड़ा था। प्रतीक रायचंद उम्र में लगभग 60 के आसपास था। चेहरे पर गहरी दाढ़ी और आंखों पर नज़र का चश्मा लगाए हुए वो एक काफ़ी सोफिस्टिकेटेड पर्सन नज़र आ रहा था। उसने इस वक्त डार्क ग्रे शिमरी सूट पहना हुआ था, जिसके साइड में एक महंगा डायमंड का ब्रोच लगा हुआ था। आज आप हमारी एंगेजमेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं ना मिस्टर रायचंद? मुझे और डिले नहीं करनी है, दक्ष ने मेहर की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, मैं आज अनाउंसमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मेहर रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। तुम तो उसे जानते ही हो, वो बहुत ज़िद्दी है। अगर मैंने उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी किया तो वो सबका जीना हराम कर देगी। तुम उसकी मासूम शक्ल पर मत जाओ। मेरे दिमाग में अगर किसी ने माफिया किंग बनने का फितूर भरा है तो वो कोई और नहीं, मेहर ही है, प्रतीक रायचंद ने सीधे सीधे जवाब दिया, जिस पर दक्ष थोड़ा नाराज़ हो गया। वो प्रतीक के साथ दुश्मनी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा, मैं वेट कर लूँगा, लेकिन आप उसकी शादी किसी और के साथ भी नहीं करेंगे। मैं पिछले 3 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ। प्रतीक रायचंद ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर वो हल्का स्माइल करते हुए मेहर की तरफ बढ़े। उन्होंने माइक हाथ में लिया और अनाउंस करते हुए कहा, थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरी लाइफ के इतने खुशनुमा पल में शामिल होने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि आज मेरी इकलौती बेटी मेहर का बर्थडे है। हर बार की तरह मैं उसके बर्थडे पर एक और नई कंपनी खोलने का अनाउंस करने वाला हूँ, जो कि ऑस्ट्रिया में खुलेगी। इसी के साथ सब तालियां बजाने लगे और फिर मेहर के लिए उसकी ड्रेस से मैच करता हुआ गोल्डन कलर का एक बड़ा सा केक वहां लाया गया। क्या बकवास है ये, हमारा भी इकलौता बच्चा है, लेकिन उसने कभी बर्थडे पर ऐसे उल्टी सीधी डिमांड नहीं की। उसे तो बर्थडे हमारे साथ सेलिब्रेट करना होता है, ना कि इस तरह लोगों के बीच शो ऑफ करके, कृषा ने चिढ़ते हुए कहा। उसे पहली नज़र में ही मेहर बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। युग ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। युग की नज़रें एक टक मेहर को देख रही थी। कृषा ने उसे नोटिस किया तो उसके हाथ पर हल्का सा मारते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम, उस लड़की को क्यों देख रहे हो? कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं चल रहा ना तुम्हारे दिमाग में? पहली बात तो मैं किसी और के बारे में उल्टा सीधा क्यों सोचूं, जब मेरे पास दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है? दूसरी बात, युग राणा किसी और की तरफ सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए देखता है, ना कि गलत इरादे से। अब चुप करके बैठो, वरना पूरी रात पार्टी में रुकना पड़ेगा तुम्हें, युग ने धमकी देते हुए कहा तो कृषा चुप हो गई। पार्टी में अब तक युग और कृषा अकेले खड़े थे, लेकिन अब पार्टी में आए लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया था और सब उनसे मिलने के लिए आने लगे। युग और कृषा उन लोगों से बात करने में बिजी थे, तभी डांस फ्लोर की लाइटिंग बदल गई। वहां एक लड़का आया जिसने ब्लैक सूट पहना हुआ था। लंबी हाइट और इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी थी उसकी। उसने चेहरे पर ब्लैक मास्क लगा रखा था। अचानक ही वहां म्यूजिक प्ले हुआ और उसने मेहर को डांस फ्लोर पर अपने साथ खींच लिया था। मेहर ने भी उसे रेजिस्ट नहीं किया। कोई और लड़की होती तो वो भी नहीं करती। मेहर उसकी ग्रेश ब्लू आईज को काफी गौर से देख रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि ध्रुव था, जिसने खुद को मास्क के पीछे छुपा रखा था। ध्रुव ने मेहर को अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए सिंग करते हुए कहा, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए। तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो, मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। मेहर हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वो उस शख्स से पहली बार मिली थी और एक ही मुलाकात में, जिसमें उसने उस लड़के का चेहरा भी ठीक से नहीं देखा था, वो उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। मेहर डांस में उसका पूरा साथ दे रही थी। वो ध्रुव के आसपास घूमते हुए डांस करने लगी। कुछ तो है तुझसे राब्ता, कुछ तो है तुझसे राब्ता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राब्ता। तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए, किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राब्ता, कुछ तो है तुझसे राब्ता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राब्ता। मेहर को एक अनजान लड़के के साथ डांस करते देखा दक्ष को बहुत गुस्सा आया। वो उसके साथ डांस करना चाहता था। दक्ष बीच में म्यूजिक रुकवाना चाहता था, लेकिन प्रतीक रायचंद ने उसे इशारे से मना कर दिया था। मेहर और उस लड़के के डांस की वजह से सबका ध्यान उस तरफ चला गया। डांस के आखिर में ध्रुव मेहर के सामने घुटने पर बैठा और फिर आगे सिंग करते हुए बोला, तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए, किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए। हो 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 हे ए। जैसे ही युग और कृषा की नजरें उनकी तरफ गईं, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। कोई और उन्हें ना पहचान पाए, लेकिन उन दोनों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो उनका ही बेटा था और 24 घंटे उनकी नजरों के सामने रहता था। कृषा गुस्से में युग की तरफ देखकर बोली, डोंट टेल मी कि ये ध्रुव है और ये यहाँ क्या कर रहा है। मुझे बताओ युग, ध्रुव यहाँ क्या कर रहा है, कहीं तुमने तो इसे यहाँ नहीं बुलाया।
शांत हो जाओ कृष, मुझे खुद नहीं पता है। वैसे भी तुम्हारा बेटा कब क्या करता है ये हमें कैसे पता हो सकता है, कौन सा वो हमें बताकर कुछ करता है। युग ने कृषा को शांत करवाया। वो बस ध्रुव के अगले मूव का वेट कर रहे थे, जिसका अंदाज़ा कहीं ना कहीं युग को अच्छे से था। जैसे ही डांस खत्म हुआ, ध्रुव ने इशारे से माइक अपने हाथ में लिया और फिर मेहर की आंखों में देखते हुए कहा, विल यू मैरी मी स्वीट हार्ट। जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, कृषा को एक झटका सा लगा। वो गिरती उससे पहले युग ने उसे थाम लिया था, तो वहीं पूरी पार्टी के लोग उनकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। ध्रुव का मास्क कभी भी नहीं उतरा था। हर किसी को इंतजार था तो मेहर के अगले मूव का, कि वो एक अनजान लड़के को, जिनकी शक्ल भी उसने नहीं देखी, उसे शादी के लिए क्या रिस्पॉन्स देती है। इन सब में दक्ष का गुस्सा सिर से ऊपर जा रहा था। उसने बस कंट्रोल कर रखा था तो प्रतीक रायचंद ने, वरना अब तक वो स्टेज पर जाकर उस लड़के यानी ध्रुव का मुंह तोड़ देता। क्या लगता है ध्रुव के दिमाग में क्या चल रहा है? आज जल्दी पार्ट दे दिया, अब आप कमेंट करके जाना। मिलते हैं अगले पार्ट पर।